प्रवचन सार प्रवचन सुधा भाग छठा लेक्चर नंबर 476। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् सुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करुहु धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थंकर अनेसो सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वळे हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाहु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनि जे नाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 85 पर हम गए 85। नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है वहां से हम पढ़ेंगे। यहाँ बात क्या हो रही है के तर्क किया था। कौन सा तर्क? कि शब्द अगर आप पुद्गल की पर्याय कहते हो तो पृथ्वी भी स्कंद है और वो चार इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है तो शब्द भी जाना जाना चाहिए। तो कहते हैं अकेले पृथ्वी स्कंद नहीं है, जल भी स्कंद है, अग्नि भी स्कंद है, वायु भी स्कंद है, परंतु उसमें कुछ तो प्रकट है कुछ अप्रकट होता है, अव्यक्त होता है। इसलिए आप जो कहते हैं, और उन्होंने ये भी दलील दी कि चंद्रकांत मणि जो है वो पृथ्वी स्कंद है और उसी का पानी हो जाता है, तो पहले तो चारों व्यक्त थे उसमें से गंध अव्यक्त हो जाता है, फिर अरण्य यानी जो पत्थर है चकमक पत्थर जिससे अग्नि उत्पन्न होती है तो वो तो पत्थर है तो पृथ्वी स्कंद है और उसमें से अग्नि उत्पन्न हुई। आवाज नहीं आ रही? बरो
आ रहे, आ रहे। उसमें से रस और गंध दो अव्यक्त है,
हाँ, अग्नि बनी ना पत्थर से। तीसरा उदाहरण दिया था जव का, वो जव सॉलिड है ना, वो पृथ्वी है, पृथ्वी स्कंद जिसको कम के, और उसमें से वायु बने, हाँ, तो उसमें भी तीन अव्यक्त है।
जव को पृथ्वी स्कंद कैसे बताया?
पृथ्वी नहीं सॉलिड, उन्होंने
वो तो वनस्पति का,
वो काय वाली बात नहीं है, काय की बात नहीं लेना यहाँ पर।
अच्छा,
जैसे हमने अरणि को भी पृथ्वी कहा
जिसका दो विभाग होने से दोबारा एज इट इज नहीं हो सकता।
स्थूल स्थूल स्कंद के लिए पृथ्वी शब्द आया है यहाँ पर
दाखले में,
क्योंकि वो पुढ़वी जल ऐसा वो गाथा है ना कि स्थूल स्थूल का उदाहरण के लिए वो पृथ्वी कह दिया उसको, ये चीज है। तो कहते उससे क्या सिद्ध हुआ कि पुद्गल की पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है। देखो नीचे से तीसरा पैराग्राफ वहां से हम पढ़ेंगे, तात्पर्य वहां बताया था। माटे शब्द पुद्गल नो सरवाड़ो आ लेवो छे ने के माटे शब्द पुद्गल नो पर्याय ज हो, अने अनेक पुद्गलों की मिली जुली जिसको हम कहेंगे स्कंद नाम की पर्याय है। जीव में अनंत आनंद पर्याय में प्रकट न होए एथी एनो आनंद गुण नथी एम नहीं। पुद्गलों के उदाहरण से जीव में घटित कर रहे, गुण तो है वो प्रकट नहीं है। जैसे हमने देखा था ना कि पानी में चारों गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण, गंध प्रकट नहीं है। अग्नि में दो प्रकट नहीं है, इस तरह से ले लेना। तो जीव में भी आनंद गुण है परंतु वो प्रकट नहीं है। आनंदनी पर्याय बाह्य में प्रकट नथी एने ठिकाने अहीं संसार नु दुख छे। आनंद नहीं है तो क्या है, दुख है। ए आनंद नो पर्याय बाह्य प्रकट नथी माटे अनंत गुण नो निषेध, आनंद गुण नो निषेध करे छे के आनंद गुण नथी। तो कहते एम नथी, यहां तक अपना हुआ था कल। आनंद गुण उसकी प्रकट पर्याय में है ही नहीं है तो क्या है, दुख है। तो इसलिए आनंद गुण ही नहीं है ऐसा कोई मानते है तो ऐसी बात नहीं है। जेम बे त्रण परमाणु भेगा थईने भेगा ने इकट्ठा होकर अशुद्धपण उत्पन्न थाय छे। क्या अशुद्धता हुई, स्कंद हुआ यही अशुद्धता है उसमें। और सिंगल परमाणु है वो शुद्ध पर्याय है परमाणु के पुद्गल के लिए। एम आनंदनु अशुद्धपणु दुखनु उत्पन्न थयुं छे। आनंद का अशुद्धपना क्या है, विभाव क्या है, दुख, सुख के विरुद्ध दुख। आनंदनु अशुद्धपणु दुखनु उत्पन्न थयुं छे ने ए दुख उत्पन्न होवाथी ए दुखनी पर्याय कादाचित थाय छे कायम नहीं। पर्याय है वो तो कभी कभी होगी, कायम के लिए नहीं है। छता एनो जे आनंद गुण छे एनो विरोध पड़े छे तो कहते एम नथी, यानी उसके कारण वहां आनंद गुण होने में कोई विरोध आता होगा तो ऐसी बात नहीं है, यानी आनंद गुण हमेशा ही पाया जाएगा। 132 गाथा पूरी थई एमां 50 मिनट तो थई, अहीं तो सरवाळो पाछो त्यां लई जवो छे के सरवाळो ने तात्पर्य उसका क्या है कि जीव में अनंत चतुष्टय गुण, इसको गुण कहा, भगवान के वो पर्याय में प्रकट हो गए उसको अनंत चतुष्टय कहा, पर ये गुण रूप है वो पर्याय में प्रकट हुआ है। तो कहते हैं जीव में कौन से जीव की बात है उमा बेन, सभी जीवों की। हाँ अनंत चतुष्टय गुण तो त्रिकाण छे, त्रिकाण बताए ना, अभव्य में भी होगा। हाँ वो उसका लक्ष्य करके प्रकट नहीं करने वाला है। ए गुणनी पर्याय कोई ने प्रकट हो के न हो एनी साथे तेना नित्य गुण ने प्रतिषेध थाय छे, निषेध थाय छे, विरोध थाय छे तो कहते एम नथी, यानी उसके कारण गुण ही नहीं है ऐसा कोई मानता है तो ऐसा है नहीं। दुखनी पर्याय काले पण आनंदना गुणनी सिद्ध थाय छे, सिद्धि थाय छे एम कहे छे, क्योंकि वो विभाव है पर्याय परंतु उसके कारण तो गुण वहां है ये बात सिद्ध होती है। दुखनी पर्याय जे काले थाय छे ए काले पण आनंद गुणनी सिद्धि थाय छे, केम के ए पर्याय छे पलटती छे अशुद्ध छे, ए अशुद्धपणु गुणने सिद्ध करे छे। क्या कहा, देखो हमें तो सिद्धि करनी है तो कायम रहने वाले त्रिकाल स्वभाव के, अशुद्ध भी विभाव भी पर्याय है वो गुण को सिद्ध करे। किसी गुण के विभाव पर्याय बता रहे, जैसे राग द्वेष विभाव है उसके द्वारा भी तो चारित्र गुण सिद्ध हो रहा है, उसकी विभाव है। तो कहते अशुद्धपणु गुण ने सिद्ध करे छे આનું મૂળ કારણ એ ખાણ, ખાણ એટલે ગુણ છે. નિમિત્ત આધીન થઈને અશુદ્ધ પરિણમ્યો, પણ એની ઉત્પત્તિનું સ્થાન એટલે નિધાન ગુણ છે. ક્યાં કહેતે સ્વયં નિમિત્ત કે આધીન હોકર વશ હોકર પરિણમિત હોય, કઈ તરહ સે વિભાવરૂપ, પરંતુ ઉસકી પર્યાય કી ઉત્પત્તિ કી ખાણ કોને, તો ગુણ. ગુણો કે પરિણમન કો પર્યાય કહેતે હમને શીખા હે. હવે આમાં એક ઇન્દ્રિયા બે ઇન્દ્રિયા કરીને મિચ્છામી દુક્કડમ કરવાનું સહેલું હતું. લ્યો ક્યાં કહેતે કે મેને જીવો કી વિરાધના કે વો મેરા મિથ્યા હો જાવે, એક કહેના તો આસાન થા, એ કહે રે. એસે કોઈ ન્યાય કી બાતે આતી તો દિમાગ લગાના પડતા હે ના, વો કઠિન લગતા હે. પણ દિમાગ લગાના વો તો ક્યા, વો તો જ્ઞાન ગુણ કા કાર્ય હે ના, ઓર વો તો અપને સે હો હી રહા હે, તો સહી જાનના એ તો વિકાસ કી બાત હે, વો તો આનંદ કી બાત હે. અનંત જ્ઞાન નો ગુણ છે, એ અનંત જ્ઞાન એ ગુણ હે, એની અલ્પજ્ઞ પર્યાય એમ સિદ્ધ નથી કરતી કે અનંત સ્વભાવ વાળો જ્ઞાન ગુણ નથી. ક્યા કહા, હમ આપકી અભી ક્ષોભશમી જ્ઞાન રૂપ અલ્પ જ્ઞાન રૂપ પર્યાય ચલ રહી હૈ, તો જ્ઞાન ગુણ નહીં હૈ એ નહીં સિદ્ધ કરે. એની જો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ નહીં હૈ વો નહીં સિદ્ધ કરે. અનંત જ્ઞાન ગુણ કોઈ અનંત જ્ઞાન કહી દયા, તો કહેતે અલ્પજ્ઞ એના નિત્ય ગુણને વિઘ્ન કરે છે, નિત્ય ગુણ નથી એમ સિદ્ધ નથી કરતું. એ કરે છે કે બાદ કોમા ચાહીએ, ફૂલ સ્ટોપ નહીં, નહીં તો નિત્ય ગુણને વિઘ્ન કરે છે એસા કોઈ માન લેગા, એસા સિદ્ધ નહીં કરતા એને એમ નથી, એસા આગે લિખા હે ને. હા હા હા, ક્યાં સમજ મેં આતી ને બાત. અભી અલ્પજ્ઞ પર્યાય હૈ, પરંતુ વહા કુછ ન કુ, હા મિચ્છા મી ટુકડો મહા તક, બરોબર બરોબર બરોબર. હિરસે પડતી દેવ, આમાં એક ઇન્દ્રિયા બે ઇન્દ્રિયા કરીને મિચ્છામી દુક્કડમ કરવાનું સહેલું હતું. લ્યો કઈ હતું એમાં, સામાયિક કરી લ્યો, ક્યાંથી થયા બાપા. અને કેવલ વો બોલને સે સામાયિક નહીં હોતી, એ કહે રહે. ઓર લોગ એસા હી માનતે કે હમને સામાયિક કર લે. બાપા તને ખબર નથી ભાઈ, ઈ ભાષા બોલાય છે, શબ્દની પર્યાય થાય છે, એ પૂદગલના કારણે થઈ છે. હું પૂદગલ કી પર્યાય, પૂદગલ સે બની હુઈ, અને એના ગુણોને એ સિદ્ધ કરે છે. ભલે એનો એ ગુણ ન હો, પણ બધા ગુણોને સિદ્ધ કરે છે. ક્યાં કહેના ચાહતે, વહા પૂદગલ સે બના હૈ તો વહા સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ સભી હૈ, વહા પર ગુણ હૈ, વહા પર ઉસકો વો સિદ્ધ કરતે. પૂદગલ હૈ તો વહા ગુણ હોને હી ચાહીએ, કિસી એક ગુણ કી વો પર્યાય નહીં હૈ, યે બતાના ચાહતે. એ બતાય ને, ભલે એનો એક ગુણ ન હો, પણ બધા ગુણોને સિદ્ધ કરે છે, તો એ જડને સિદ્ધ કરે છે. અમે તો ક્યાં લગતા ભાષા હમને બોલી, હમને ચાહી જૈસી ભાષા નિકાલી હે ને, હમને ગાના ગાયા, કિસકી કાર્ય કિસકા લગતા અપના, તો કહેતે વો પૂદગલ કો સિદ્ધ કર રહા હૈ, જડને સિદ્ધ કરે છે હે ને. ભાષાની પર્યાય એના દ્રવ્ય ગુણને સિદ્ધ કરે છે. ભાષાની પર્યાય ત્યાં આત્મા છે, માટે ભાષાની પર્યાય થઈ, એટલે ભાષાની પર્યાય ત્યાં આત્માને સિદ્ધ કરે છે એમ નથી. અનંત જ્ઞાનનો ગુણ છે, એ ગુણ કોઈ અનંત જ્ઞાન કહી દયા, એની અલ્પજ્ઞ પર્યાય એમ સિદ્ધ નથી કરતી કે અનંત સ્વભાવવાળો જ્ઞાન ગુણ નથી. ઉલટા તો પર્યાય હૈ તો નિત્ય કો સિદ્ધ કરતી, અલ્પજ્ઞ એના નિત્ય ગુણને વિઘ્ન કરે છે, નિત્ય ગુણ નથી એમ સિદ્ધ નથી કરતો. સમજાણું કઈ, આ હા હા. એમ મિથ્યાત્વની પર્યાય એના શ્રદ્ધા ગુણનો નિષેધ કરે છે એમ નથી, ક્યુકી મિથ્યા દર્શન કહો, મિથ્યાત્વ કહો, એ તો પર્યાય હૈ, પર્યાય હૈ વો અનિત્ય હૈ, તો વહા કુછ તો નિત્ય તો ગુણ હોના હી ચાહીએ. મિથ્યાત્વની પર્યાય છે, એ વખતે સમ્યક્ત્વની પર્યાય નથી, માટે સમ્યક શ્રદ્ધા ગુણ એમાં નથી એમ નથી. ગુણ કો સમ્યક શ્રદ્ધા ગુણ કહી દયા, ક્યુકિ ગુણ હૈ તો ઉસકે સ્વાભાવિક ગુણ હૈ, ઓર યે પર્યાય ઉસકા વિભાવ હૈ. सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा, किसको कहा? वो पर परमेश्वर को नहीं कहा, आत्मा को कहा, सर्वज्ञ परमेश्वर आत्मा एनी आ बधी लीला छे। समझानु काई? भले सर्वज्ञपणु पर्याय मां न आव्यु होय एथी एना सर्वज्ञ गुणनो विरोध आवे छे एम नथी। एने अभी पर्याय में अल्पज्ञपना है, पण सर्वज्ञ गुण का निषेध नहीं होता, वो है ही उल्टा सिद्ध हो जाता है। भाई आवी वातु छे। आहाहा, रागनी पर्याय विकारी छे, माटे त्यां अविकारी चारित्र गुण नथी एम सिद्ध नथी करतो। देखो एक एक पर्याय लेकर उसके गुण को सिद्ध करे। समझानो काय? एटले के सम्यक दर्शननी पर्याय होय तो श्रद्धा गुण छे एम सिद्ध थाय एम नथी। इनी सम्यक तो होने पर ही श्रद्धा गुण सिद्ध होता, ऐसा नहीं है। वो पूरा किया है कौन की तरफ? भगवान ना गुणों तो नित्य कायम छे, भले पर्याय में अल्पज्ञता हो विपरीतता हो, एथी गुणनी शक्ति नु एक रूप खंडाय छे एम नथी। एने मिथ्यात्व के समय में भी गुण की तो परिपूर्ण शक्ति वहां है, गुण सिद्ध नहीं होता ऐसा नहीं है। आहाहा, अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय स्वरूप भगवान आत्मा, क्योंकि वो उसके गुण है ना, तो उस स्वरूप बताया। रागादि रहित शुद्धात्म ध्याने न शुद्धत्वम भवति। ये जैसेन आचार्य की टीका में आता ना, रागादि स्नेह रहित, वो चिकनाई थी ना राग की, तो उससे रहित, राग से रहित यानी क्या? वितराग। तो रागादि स्नेह रहित शुद्धात्म ध्याने न, अने रागादि स्नेह से रहित ऐसे शुद्धात्मा के ध्यान से शुद्धत्वम भवती, शुद्धत्व होता है। किस होता है करते क्या पर्याय में होता है? द्रव्य तो अनादि से शुद्ध ही है। तथा वर्णादि चतुष्टयस्य अपि, अभी पहले जीव को लेकर अभी वर्णादि चतुष्टय की बात करें, अर्थात चिकास गुण ने अभावे बंधन ना अभाव थी परमाणु पुद्गल शुद्धत्व मिति। ओहो हो, अभी क्या कह रहे? वहां पर पुद्गल में भी क्या है? तो वहां चिकास गुण के अभाव में, क्योंकि स्निग्धत्व और रुक्षत्व का जो दो गुण का डिफरेंस है उसके कारण बंध होता है, तो उसके अभाव में क्या हो रहा है? वह एक गुण का बंध नहीं होता, तो इसलिए उसके अभाव में क्या होता है? परमाणु भी शुद्धत्व को प्राप्त करता है, ये कह रहे। वाद गमे भी साधारण चालती हो, पन जैसे नाचारे देवनी शैली आत्मा में ले जाए, और ये गुरुदेव से हम सीखे। कोई भी सिद्धांत हो, वो सिद्धांत पढ़कर या सुनकर या समझकर अपने आत्मा की ओर कैसा विचार करना है, आत्मा के सम्मुख कैसे होना, उसकी बात आती वहां पर। हवे अमूर्त एवा बाकीना द्रव्योना गुणों कहे छे। आपने आमा आवी गयु छे के अमूर्त द्रव्यना अमूर्त गुण अने मूर्त द्रव्यना मूर्त गुण। तो आत्मा मा रागादि थयो, मा के ऊपर बिंदी, आत्मा मा रागादि थयो अने एने क्यांक उपचार थी मूर्त कहो छे, एथी अमूर्तपण एमां नथी एम नहीं। क्या कहते हैं? वो तो रागादि की अपेक्षा कहो या अनादि कर्म बंधवश के कारण कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए उसको कहीं मूर्त भी कहने में आता है, वो तो उपचार है। तो आत्मा कैसा है? तो अरूपी है, अमूर्त है, उसके गुण भी अमूर्त हो गए। ए अमूर्त छे जो लगाए ना मुक्षु, कहते ये तो सिद्ध थाय त्यारे अमूर्त कहवाए, नहीं तो संसारी अवस्था में तो कर्मों के साथ बंधा हुआ था तो उसको मूर्त कहते थे। क्या कहा? हम्म, देखो देखो, उपचार से कहने पर भी अमूर्तपना नहीं है ऐसा नहीं है। संसारी जीव को मूर्त कहा, क्यों? वो कर्म है वहां पर, या यहाँ तो रागादि को लिया, रागादि के कारण उसको मूर्त कहा, क्योंकि रागादि भी सिद्ध करे कर्म को सिद्ध करे, या रागादि को भी उपचार से पुद्गल भी कहेंगे हम, मूर्त कहेंगे, तो उस अपेक्षा से यहाँ क्या कहा, संसारी अवस्था में जीव को मूर्त कहा। और सिद्धों को वो तो परिपूर्ण जो अमूर्तिक उनका प्रकट हो गया, क्योंकि कर्मों का शरीर का पूर्ण अभाव हो गया, समझ में आती है बात, तो वहां उसको हम अमूर्तिक कहेंगे। पर उपचार से मूर्त कहा था, उपचार से मूर्त कहने पर भी जीव तो अमूर्तिक ही है। उपचार से हम उपचार क्यों लगाते हैं, कोई संबंध देखकर लगते हैं, जैसे आपको कहा ना वो तो शक्कर की बरनी चाय की बरनी, वो तो संयोग को देखकर कहते हैं इस तरह से।
यहाँ पर ऐसा भी हम कह सकते हैं, हाँ? कि किसी को कहा कितनी बार समझाया तो अज्ञानी है, तो उसके अंदर ज्ञान गुण है कि नहीं, फिर भी उसको उपचार से अज्ञानी कह रहे, ऐसा यहाँ उसको मूर्त कह रहे हैं, है तो अमूर्त द्रव्य। आगे,
हाँ देखो, मुमुक्षु पूछ रहे थे ये तो सिद्ध था तारे अमूर्त केवाय, एक केवाय की बात है, हाँ? गुरुदेव जी कहते अहीं अत्यारे अमूर्त छे, सिद्ध नी बात नथी, यानी संसारी अवस्था में भी वो अमूर्त ही है, क्योंकि जीव द्रव्य कहेंगे तो अमूर्तिक है। समझाणु काय, आ घना तकरार करे छे ने, हमना एक जने एक चोपड़ी नथी छपावी, एमां आव्युं हतुं जीवने मूर्त कह्यो छे, पछी तो भ्रष्ट थईने चाल्यो गयो, निकली गयो, क्षुल्लक थयो तो, अरे भगवान बापा आ ते मार्ग केवो, आहा हा, आ तो जैनी योग्यता होय एने पचे एवुं छे। देखो, नहीं तो क्या, लोग एक तो भ्रष्ट हो जाएंगे या अनर्थ करेंगे, उसमें स्वच्छंदी हो जावे, भटकने के तो रास्ते बहुत है।
कहाँ कहाँ भटकने के,
एक भटकने के संसार में।
अच्छा।
रखड़ने के मूल मार्ग से भ्रष्ट होने, भटकना का अर्थ क्या है, मूल मार्ग छोड़कर अभी आए हैं, सुना है, परंतु उसमें से कोई विपरीतता ग्रहण कर जो अपने मन से सोच लेता है, किसी का एकांत कर लेता है, उसका बैलेंस नहीं रहता है। ये अहीं कयू नहीं, जीवनु अमूर्तपणु सिद्ध कर्यू ने, समझानु कया, हा हा, हवे बधा गुणों में अमूर्त शू छे ए सिद्ध करे करशे। अब गाथा नंबर 133 नंबर
133 34
युगल है, युगलम, युगलम यानी
जोड़,
जोड़ गाथा है उसका, गुजराती इधर ही है ना, हाँ,
नीचे राइट साइड पे,
हाँ, राइट साइड में, हाँ, पढ़ेंगे अभी 88 पृष्ठ पर। अथ अमूर्तानाम शेष द्रव्याणाम गुणान गृह्णाति, अभी उसका ट्रांसलेशन क्या है, राइट साइड में देखो, हवे अमूर्त एवा बाकी ना द्रव्यों ना, शेष द्रव्य ने जीव की बातें बताई, अभी अन्य भी अमूर्त द्रव्यों के गुण बताएंगे यहाँ, क्योंकि हमारे विषय क्या है, द्रव्यों के विशेष गुण यहाँ बताएंगे, पुद्गल के वर्ण रस गंध स्पर्श बता दिए, जीव के भी ज्ञान आदि मैंने अनंत चतुष्टय रूप से गुण बता दिए, अब अन्य द्रव्यों के गुण बताएंगे, पढ़ेंगे गाथा। आगा सस्वगा हो धम्मदौवस्स गमन हेदुत्तम धम्मे दरदौवस्स दुगु गुणो पुणो ठाण कारण दा कालस्वट्टनासे गुणो वो गोति अपणो भणिदो नेया संखे वादो गुणाहि मुत्ति पहीनानं आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमन हेतुत्वं धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुण पुनस्थान कारणता कालस्य वर्तनास्यात् गुण उपयोग इत आत्मनो भणितः गेयाः संक्षेपाद् गुणाहि मूर्ति प्रहीणानाम् अवगाह गुण आकाशनो गति हेतुता चे धर्मनो वरिष्ठान कारण तारूपी गुण च
છે કાળનો ગુણવર્તના ઉપયોગ ભાખ્યો જીવમાં એ રીત મૂર્તિ વિહીનના ગુણ જાણવા સંક્ષેપમાં
બહુ આસાન હે પ્રત્યેક દ્રવ્ય કે જો વિશેષ ગુણ યહાં બતાયા હૈ અન્વયાર્થ પડ લેતે આકાશસ્ય ચાહિયે આકાશ્ય હુઆ હૈ શર્ષ્ય યે નિકાલ કર હી નયા લિખના પડેગા આકાશસ્ય શ પૂરા ઔર સ્ય હા સૌર્ય આકાશસ્ય અવગાહ આકાશનો અવગાહ એ ક્યાં બતા રહે સબકો મિલકર ઇનકા ગુણ એક એક દ્રવ્ય કા એક એક ગુણ બતાયા ધર્મ દ્રવ્યસ્ય ગમન હેતુત્વ ધર્મ દ્રવ્યનો ગમન હેતુત્વ એને ગમન મે નિમિત્ત હોના એસા ઉસમે ગુણ હૈ ઉસી કે દ્વારા હમ ઉસકો પહેચાનતે હૈ તો અનંત ગુણ પણ અપને સે ક્યા લગતે હુએ તો ગમન હેતુત્વ હૈ દેખો સંસ્કૃત મે કહો યા પ્રાકૃત મે ક્યા લિખા હૈ ધર્મ દ્રવ્ય કે બાદ ક્યા નીચે સેકન્ડ લાઇન મે કી કિસકી બાત કી ધર્મેતર દ્રવ્ય ને ક્યા હૈ ધર્મ સે ઇતર ક્યા હૈ તો અધર્મ એસે પદ્ધતિ હૈ ઇતર કહેને સે ઉસકા જો પ્રતિપક્ષી હૈ જો અન્ય હોગા ઉસકી બાત હૈ ઇસલિયે કહેતે ધર્મેતર દ્રવ્યસ્ય ગુણઃ અધર્મ દ્રવ્યનો ગુણ સ્થાન કારણતા સ્થાન કારણતા છે સ્થાન કારણ એની સ્થિતિ પહેલે ગમન પૂર્વક સ્થિતિ હોના ઉસમે નિમિત્ત હૈ કારણતા એને હેતુત્વ હેતુત્વ એને નિમિત્તપના કાલસ્ય એને કાળનો ગુણ વર્તના સ્થાત નહીં સ્યાત ચાહીએ ને સ્યાત હોના ચાહીએ સ્થાત હુઆ સ્ય હૈ વો સ્યાત સ્યાત એને હૈ કાળનો ગુણ વર્તના છે આત્મનઃ ગુણઃ આત્માનો ગુણ ઉપયોગ ઇતિ ભણિતઃ ઉપયોગ કયો છે મૂર્તિ ગ્રહીણાનામ ગુણાઃ હી આ રીતે અમૂર્ત દ્રવ્યોના ગુણો
એક મિનિટ હા મૂર્તિ પ્રહીણાનામ યહાં લિખા હૈ
મૂર્તિ પ્રહીણાનામ હા પ્રહીણાનામ ચાહીએ મૂર્તિ રહિત હૈ ને મૂર્તિ વિહીન પ્રહીણ કહા ગ્રહીણ નહીં પ્રહીણ મેં ભી ભૂલ ગઈ હા દેખો સંસ્કૃત મેં દેખે સંસ્કૃત યુગલમ વાલી જો ને સેકન્ડ લાઇન સેકન્ડ શ્લોક સેકન્ડ લાઇન લાસ્ટ વર્ડ હૈ મૂર્તિ પ્રહીણાનામ એને મૂર્તિ હીન દ્રવ્ય જો હૈ પ્રહીણ એને વિશેષ હીન
વિશેષ રૂપ સે
મૂર્તિ સે રહિત એને અમૂર્તિ દ્રવ્ય તો મૂર્તિ પ્રહીણાનામ ગુણાહા હી આ રીતે અમૂર્ત દ્રવ્યોના ગુણો સંક્ષેપાત ગેયાહા ઉત્ત આધા ચાહીએ સંક્ષેપાત તો આધા એને ખોડો હલંત સંક્ષેપાત સંક્ષેપથી ગેયાહા જાણવા અભી મેં કેવલ ગુજરાતી પડતી આકાશનો અવગાહ ધર્મ દ્રવ્યોનો ગમન હેતુત્વ અને વળી અધર્મ દ્રવ્યોનો ગુણ સ્થાન કારણતા છે કાળનો ગુણ વર્તના છે આત્માનો ગુણ ઉપયોગ કયો છે આ રીતે અમૂર્ત દ્રવ્યોના ગુણો સંક્ષેપથી જાણવા એ તો અમારે લીએ તો કિતને વાર હમણે એવું તો સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા મેં શીખા હૈ ને અબ ટીકા અમૃતચંદ્રાચાર્ય કી ટીકા પડતે પહેલે યુગપત સર્વ દ્રવ્યોને સાધારણ અવગાહનું હેતુપણું આકાશનો વિશેષ ગુણ છે દેખો ઇસમે ક્યાં વિશેષતા બતાઈએ એક તો શબ્દ યુગપત લ્યા ઓર એટ અ ટાઈમ સભી દ્રવ્યો કો અવગાહના દેના એસે એક દૂસરે કો અવગાહન દેના તો સભી છ દ્રવ્ય મેં પાયા જાતા હૈ ક્યુંકિ જહાં ધર્મ હૈ વહીં પર અધર્મ દ્રવ્ય ભી હૈ તો આકાશને તો ધર્મ દ્રવ્ય કોઈ અવગાહના દી પણ ધર્મ દ્રવ્યને અધર્મ કો ભી દી કે નહીં જહાં ધર્મ દ્રવ્ય હૈ વહાં काल द्रव्य भी है, वहाँ पुद्गल भी है, वहाँ जीव भी है। जहाँ एक जीव है वहाँ दूसरा जीव भी उसी क्षेत्र में रहता है, जिसको हम एक क्षेत्रावगाही संबंध कहते हैं। पर वो आकाश का अवगाहक क्यों कहा, वो एक युगपत सभी द्रव्यों का अवगाहना देता है, ऐसा बाकी द्रव्य नहीं। वो तो अपने अपने क्षेत्र में जहाँ है वह उसको अवगाहना देगा। देखो युगपत सर्व द्रव्यों ने साधारण अवगाहनु हेतुपणु, हेतुपण करते हैं निमित्त, आकाश नो विशेष गुण छे। एक ही साथ है, देखो ये सब में एक ही साथ शब्द लगाया, युगपत को या एक ही साथ को अर्थ एक ही है। एक ही साथ सर्व गमन परिणामी, गमन परिणामी ने गमन करने वाले, गमन करते हुए अभी लोकाकाश में कितने जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं, अनंत। हमने जीव कैसे अनंत हो गए गमन कर रहे हैं एट ए टाइम? आप जब समझाओ जीव अनंत जीव एट ए टाइम गमन कर रहे हैं, आप कुछ समझा सकते हैं इसको? गमन कौन करेंगे, एक इंद्रिय करेंगे क्या त्रस्त? हाँ विग्रह गति। अनंत जीव है, प्रत्येक समय में अनंत जीव, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, नो ट्रैफिक जाम। चलो अनंत तो निगोद ही है, वो कहीं एक शरीर से कहीं दूसरे शरीर में, कहीं लोकाकाश के किसी भी कोने में उत्पन्न हो सकते हैं। यानी गमन यानी हम चलते उतना ही गमन नहीं लेना है। हाँ तो एक ही साथ है सर्व गमन परिणामी, यानी गति रूपे परिणामेला जीव पुद्गलों ने गमन नु हेतुपनु। देखो कितने अनंत अनंत द्रव्य एक साथ गमन कर रहे हैं, क्योंकि जीव कारमान का योग में जीव यहाँ से वहां जा रहे हैं, तो उसके शरीर भी जाएंगे ना, कारमान शरीर और तेजस शरीर और उनके विसरसोक्ष है। तो एक एक जीव के साथ अनंत अनंत पुद्गल, और पुद्गलों का अपना परिणमन अलग से चल रहा है वो तो जुदा। तो उनके एट ए टाइम जो सभी जीव पुद्गलों ने गमन नु हेतुपनु धर्म नो विशेष गुण छे। ये धर्म कहने से धर्म द्रव्य है। फिर एक ही साथ सर्व स्थान परिणामी जीवों ने पुद्गलों ने स्थान नु हेतुपणु यानी स्थिति नु अर्थात स्थिरता नु निमित्तपणु अधर्म नो विशेष गुण छे। काल सिवाय बाकीना अशेष द्रव्यो ने दरेक पर्याये समय वृत्ति नु हेतुपणु અને સમય સમયની પરિણતિનું નિમિત્તપણું, સમય વૃત્તિ અને પ્રતિ સમય એવું રહેના રહેના વૃત્તિ વર્તના કાળનો વિશેષ ગુણ છે। યહાં પર ભી સભી કો ઇકઠ્ઠા લિયા ના સભી દ્રવ્યો કો, ચૈતન્ય પરિણામ જીવનો વિશેષ ગુણ છે। આ પ્રમાણે અમૂર્ત દ્રવ્યોના વિશેષ ગુણોનું સંક્ષેપ જ્ઞાન થતા अमूर्त द्रव्यों ने जानवाना लिंग।
एक मिनट।
हाँ कुछ कह रहे अब।
ये तीसरी लाइन में ऊपर से,
तीसरी लाइन में
काल सिवाय लिखा है इन ब्रैकेट, वो गलत है, क्योंकि काल द्रव्य को परिणमन में काल द्रव्य स्वयं
हेतु है।
यानी ये तो गुरुदेव ने नहीं लिखा होगा,
बाद में
बताया होगा, ये तो काल सिवाय लिखा
है। बाकी ना अशेष द्रव्यों ने लिखा है ना, वो तो मूल टीका में लिखा है।
हाँ बाकी ना अशेष द्रव्य यानी कितने, तो काल सिवाय जो लिखा है वो खटकता है मुझको।
मूल संस्कृत में नहीं है, देखो 89 पेज निकालो, अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत टीका। नहीं नहीं वो किसकी है,
तीसरी लाइन में है
वहाँ, वो तो जैसे ना चलती। 88 पर लेना, 88 पर लेना
तीसरी लाइन।
हाँ
अशेष शेष द्रव्य में
स्थान परिणामी नाम जीव पुद्गलान स्थान हेतु धर्म से अशेष अशेष शेष द्रव्याणाम प्रतिपर्यायम समय वृत्ति हेतुत्व कालस्य।
यानी कुछ बाकी न रहे
हुए, क्योंकि यहाँ जैसे नाचार्य की टीका में देखो
वहाँ नीचे से अभी 133-134 छोड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठी लाइन, सर्व द्रव्याणाम युगपत पर्याय परिणति हेतुत्वम विशेष गुणत्वात्, एवं अन्य द्रव्याणाम असंबद्ध सत्काल द्रव्यम निश्चित होने।
यानी ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है,
सभी अशेष द्रव्यों के ऐसा लिख, क्योंकि काल द्रव्य स्वयं अपने लिए भी निमित्त है उसका परिणमन में,
तो इसको कैसा सुधारे, ब्रैकेट में निकल दे।
वो काल सिवाय लिखा है उतना निकाल दो, बाकी बाकी ना अशेष द्रव्यों ने लिखा है वो रखने दो।
यानी बाकी ना का अर्थ शेष अशेष द्रव्यों ने,
अशेष शेष द्रव्य उन्होंने अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है, अशेष शेष द्रव्य अमृतचंद्राचार्य की टीका में आया है 88 पेज पर।
बराबर, तो अब हम कैसा करें, बाकी ना तक निकाल दे।
देखो एक तो एक मिनट कहां लिया है, वो आगे समझाएंगे।
नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था कि काल सिवाय बाकी ना ये निकाल देवे, अशेष शेष द्रव्यों ने,
अशेष शेष द्रव्य यानी कुछ बाकी रखे रखे बिना शेष द्रव्यों के, काल सिवाय इतना ही निकालो, बाकी कुछ नहीं निकालना।
अच्छा,
शेष यानी बाकी और अशेष द्रव्यों ने कुछ बाकी रखे भी ना, दरेक पर्याय समय वृत्ति नु हेतुपणु एने समय समय नी परिणति नु निमित्तपणु काल नो विशेष गुण छे, चैतन्य परिणाम जीव नो विशेष गुण छे। बाकी सभी जगह में कैसे युगपत युगपत लिया ना, तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं ना, सभी को युगपत जानने के उपयोग रूप शक्ति है ना जीव में। हाँ, हाँ देखो चैतन्य पर आ प्रमाणे अमूर्त द्रव्यों ना विशेष गुणों नु संक्षेप ज्ञान थता अमूर्त द्रव्यों ने जानवाना लिंग एटले चिन्ह एने लक्षण साधन प्राप्त थाय छे। उसका अर्थ क्या है, ये विशेष गुणों को ही लिंग कहा ना, विशेष गुणों के द्वारा वो द्रव्य पहचानने में आते हैं, अर्थात तेते विशेष गुणों वड़े तेते अमूर्त द्रव्यों नू अस्तित्व जणाय छे सिद्ध थाय छे, एने उन विशेष गुणों के द्वारा उन्होंने अपने अपने अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व जाना जाता है यानी सिद्ध होता है। अब कहते ते स्पष्टता थी समझावामां आवे छे, उसका और स्पष्ट करेंगे किस तरह से, क्या एकज काले यानी युगपत जिसको कहे ना उसका अर्थ एक ही समय में युगपत, सर्व द्रव्यों ने साधारण अवगाहनु संपादन यानी अवगाहन हेतुत्व रूप लिंग, अवगाहन हेतुत्व आकाश का विशेष गुण है, वो आकाश के लिए उसको उसका लिंग कहेंगे हम, आकाश ने जनावे छे यानी युगपत अवगाह हेतुत्व या आकाश का विशेष गुण है, उसके द्वारा आकाश द्रव्य जाना जाता है, कारण के बाकी ना द्रव्यो सर्वगत नहीं हुआते, सर्वगत का अर्थ है सर्वव्यापक, तेमने ते संभवतु नथी यानी वो नहीं होता
अवगाहन हेतुत्व
यानी युगपत अवगाहन नहीं होता सबके लिए, एवीज रीते
एक मिनट।
हाँ,
यहाँ पर जो अभी यहाँ जो बात बताई है कि बाकी ना द्रव्यों को सर्वगत यानी सर्ववक नहीं हुआ थी तेमने एटले ते द्रव्यों ने ते संभवतु नथी यानी अवगाहन हेतुत्व संभवतु नथी।
नथी, हाँ। यानी वो अवगाहन हेतु तो अन्य द्रव्यों का विशेष गुण क्यों नहीं कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि आकाश ने तो सबको अवगाहना दी, परंतु सभी द्रव्य तो आकाश को कहाँ अवगाहना दे रहे हैं? आप कहेंगे धर्म द्रव्य सबको दे रहे हैं ना, नहीं वो तो लोकाकाश जितना ही है, वो उसने पूरे आकाश द्रव्य को कहाँ अवगाहना दी है? ख्याल में सबको अवगाहना देने वाला एक आकाश द्रव्य है, और वो भी युगपत एट ए टाइम लेना है, एक ही समय में एक ही काल में। एवीज रीते एकज काले, एकज काले में एम्फोसिस दे रहे हैं ना, गति परिणत एटले गति रूपे परिणमेला समस्त जीव पुद्गलों ने लोक सुधी गमन नु हेतुपणु धर्म ने जनावे छे। यानी जीव पुद्गलों का लोक में सर्वत्र गमन है, तो धर्म द्रव्य क्या है? वो पूरे लोक में व्याप्त है ऐसा सिद्ध कर रहा है, तो धर्म द्रव्य सिद्ध हो रहा है। कारण के काल ने पुद्गल अप्रदेशी हुआ थी तेमने ते संभवतु नथी। अप्रदेशी का अर्थ क्या लेना दक्षावेन यहाँ पर? काल और पुद्गल को अप्रदेशी कहा, हाँ तो अप्रदेशी क्यों कहा? हाँ बोलो। हाँ कायत्व जिसको कहेंगे बहुप्रदेशीपना नहीं है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा। उनका अपना एक प्रदेश है, सिंगल प्रदेश, अनेक प्रदेश नहीं है, इसलिए अप्रदेशी कहा। इसीलिए तो पूछा आपको जिसको हम पंचास्थी काय कहेंगे, बहुप्रदेशीपना को कायत्व कहेंगे, बहुप्रदेशीपना नहीं है तो बहुप्रदेशी नहीं है इसलिए अप्रदेशी कहा। एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहने की पद्धति है, यही तो हमको जानना है कहाँ क्या कहते हैं और किस अपेक्षा से कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो कि काल ने पुद्गल अप्रदेशी हुआ थी, यानी एक ही सिंगल प्रदेशी होने के कारण तेमने ते संभवतु नहीं, क्यों नहीं होगा? ते संभवतु नहीं ने क्या? देखो देखो मैं ये वाक्य फिर पढ़ते, कारण के काल ने पुद्गल अप्रदेशी हुआ थी तेमने, तेमने इतले काल ने पुद्गल ने ते संभवतु नहीं, ते इतले शू अवगाना ने यहाँ गमन, गमन नो हेतु पनो
परिणमन हेतु तो पना,
हाँ क्यों नहीं होगा बोलो? नहीं समझे, देखो देखो गमन कब कहेंगे? एक कोई प्रदेश है दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो गमन कहेंगे, तो वही परमाणु अनेक प्रदेश व्यापेगा तो उसमें गमन में हेतुपना होगा। नहीं समझे? एक प्रदेश पर वो दूसरा परमाणु होगा ना वहां, एक ही परमाणु दो प्रदेश में तो है ही नहीं है, आकाश के दो प्रदेश में ही गया, पर एक सिंगल परमाणु सिंगल प्रदेश व्याप्ता है, और गमन के लिए वही एक ही द्रव्य सर्वत्र व्याप्ता होगा तो उसमें गमन होगा। जैसे पानी मछली के लिए गमन में हेतु है, तो जहां तक पानी है वहां तक मछली गमन कर रही है। अब जो कहेंगे जितने वो तो मान लेते कि जितनी मछली उतना ही पानी है वहां पर, तो मछली कहाँ गमन करेगी? या मछली से भी पानी छोटा होगा तो थोड़े ही वो गमन करेगी कहेंगे। तो जो एक ही प्रदेशी द्रव्य है वो आकाश का एक ही प्रदेश है ऑक्युपाई कर रहा है, तो वहां गमन की पॉसिबिलिटी कहाँ है? ख्याल में परमाणु स्वयं गमन करता है उसके बाद नहीं, वो परमाणु और काल द्रव्य एक सिंगल प्रदेशी है, और उसके लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए वो उसमें निमित्त नहीं बन सकते। धर्म द्रव्य कैसा है? वो सिंगल है परंतु पूरे लोक में व्याप्त है, इसलिए लोक में कहीं से भी कहीं पर भी जाने वाले जीव और पुद्गलों के लिए वो निमित्त है, ये बता रहे यहाँ पर। हाँ अभी नहीं समझे?
देखो मैं ट्राई कर,
हाँ, हाँ
देखो हम काल द्रव्य की अपेक्षा से बात करेंगे। एक काल द्रव्य है वो कितना प्रदेश रोकता है? एक प्रदेश, तो वो परिणमन में हेतु क्यों भी होगा कि उसके ऊपर कोई स्थित होगा, उसका जो परिणमन चल रहा है उसमें काल द्रव्य निमित्त है, परिणमन हेतु तो उसका विशेष गुण है। अब वो कोई पुद्गल या जीव एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया, तो दूसरे प्रदेश पर वही कालानु होगा या दूसरा कालानु होगा? तो वो पहला कालानु है वो परिणमन हेतु तो हमें
परिणमन नहीं गमन हेतु,
गमन दोनों बातें बताई ना,
नहीं नहीं यहाँ परिणमन नहीं लिया,
गमन
धर्म द्रव्य की बात है।
हाँ, कारणे पुद्गल अप्रदेशी हुआ थी तो यानी काल भी अप्रदेशी है, ये भी बात हो गई ना।
सिंगल प्रदेशी को अप्रदेशी कहा।
हाँ ठीक है ना, तो मैं क्या कहता हूँ, परिणमन हेतु तो हमें दूसरे इसमें जाएगा, मैं काल द्रव्य की बात कर रहा हूँ, आप धर्म द्रव्य की बात कर रहे हैं।
फिर से मैं आगे का पढ़ रही थी, आप क्या कह रहे थे, मेरा ध्यान नहीं।
मैं ये कह रहा था ये नया पैराग्राफ जो है सेकंड, ए भी जुड़ी थे एकज काले,
एकज काले ने गति परिणम समय में, हाँ।
युगपत जिसको हम कहेंगे,
हाँ, युगपत
गति रूपे परिणाम समस्त जीव पुद्गलों ने लोक सुधी गमन नो हेतु पणु धर्म ने जनावे जी, क्योंकि उसमें परिणाम हेतु सॉरी गमन हेतु तो जो
गमन हेतु तो है ही है, परंतु वो पूरे लोक में व्याप्त है, ये उसका कारण।
सही बात है, क्योंकि वो बहुप्रदेशी है, कारण के अभी अन्य द्रव्यों की बात कर रहे हैं। काल अने पुद्गल अप्रदेशी हुआ थी तेमने, यानी काल और पुद्गल को ते एटले परिणमन हेतुत्व संभवतु नथी, ये बात आई।
गति हेतुत्व आप परम बारंबार परिणमन कह रहे।
अच्छा अच्छा,
ते ने गति हेतुत्व संभवतु नथी,
बरोबर गति हेतुत्व संभवतु नथी,
गमन नु हेतु पण। अब कहेंगे जीव भी अनेक प्रदेशी है ना, तो वो तो निमित्त होता है, पर क्या एक ही जीव पूरे लोक में व्याप्त है? आप कहेंगे केवली समुद्र के समय बस उतने के लिए है, तीन समय के लिए, हाँ, परंतु हमेशा तो नहीं रहेगा वो। यहाँ क्या कहते देखो, जीव समुद्घात सिवाय अन्यत्र लोकना असंख्य मां भाग मात्र हुआ थी तेने ते संभवतु नथी, ते संभवतु नथी यानी गमन नु हेतु पण संभवतु नथी, क्योंकि वो अपने अपने शरीर प्रमाण है। समुद्घात के समय भले अनेक प्रदेश व्याप्ता है और जरा शरीर से बाहर, केवल समुद्घात में ही पूरे लोक में व्याप्त है, अदरवाइज वो मारणांतिक समुद्घात में विशिष्ट एरिया व्यापेगा, जहाँ जन्म लेना है वहां तक प्रदेश फैलेगे, पर पूरे फैलेगे नहीं ना, उसके शरीर की जितनी अवगाहन है उतने वैसे वो फैलेगे, इसलिए वो भी सभी द्रव्यों को युगपद गमन में हेतु नहीं हो सकता। एक एक द्रव्य को रूल आउट कर रहे हैं। अब कहते हैं आकाश लोक ने अलोक नी सीमा अचलित हुआ थी, अचलित यानी वो चेंज नहीं होती है वही से रहती है, कभी लोक थोड़ा इधर होगा लोक थोड़ा इधर हो जाए ऐसा नहीं होता। तो लोक ने अलोक नी सीमा अचलित हुआ थी आकाश ने ते संभवतु नथी, अने विरुद्ध कार्य नो हेतु हुआ थी अधर्म ने ते संभवतु नथी। आप कहेंगे अधर्म भी एग्जैक्ट उतना ही है ना, वो भी बहुप्रदेशी है पूरे लोक प्रमाण व्याप्त है, परंतु वो तो उसका कार्य विरोध वाला है, वो स्थिरता में हेतु है और ये गमन में हेतु है, इसलिए अधर्म को भी वो संभव नहीं है। बहुत अच्छा बताया, गमन हेतुत्व क्यों अधर धर्म को ही दिया, अन्य छह द्रव्यों में से यानी पांच अन्य द्रव्यों में गमन हेतुत्व क्यों नहीं है, इसकी चर्चा चल रही है।
वो उसका विशेष गुण है ना,
वो विशेष गुण है, पर ये न्याय से लॉजिक से सिद्ध कर रहे हैं, ये न्याय समझे तो ये नहीं तो गड़बड़ी है, क्या कह रहे क्या कह रहे ऐसा, क्योंकि समझ में आया ना क्या हो रहा है। आकाश को क्यों नहीं बताया गमन का हेतुत्व, धर्म द्रव्य को क्यों बताया, स्थिर ही है यानी आकाश में गमन हेतुत्व अगर हम कहेंगे तो आकाश तो पूरा द्रव्य है, तो गमन हेतुत्व तो वहां क्यों नहीं जाते हैं, तो लोक की सीमा है लोक तक ही जाते हैं, उसका अर्थ कोई अन्य ऐसा वहां द्रव्य है कि जो उसमें गति हेतुत्व है, इसलिए वो धर्म द्रव्य है, वो गति हेतुत्व वाला द्रव्य है यानी उसमें गमन में हेतुपना होता है।
यानी अन्य द्रव्य में गमन हेतुत्व क्यों नहीं है, इस बात से
न्याय से बता रहे हैं, लॉजिक से बता रहे हैं। देखो ये ब्रैकेट में पूरा वही बता रहे हैं।
हाँ, काल द्रव्य के और पुद्गल की बात।
काल ने पुद्गल एक प्रदेशी हुआ थी, लिखा ना ऊपर अप्रदेशी था, उसको भी समझाने के लिए बता रहे एक प्रदेशी हुआ थी ते वो लोक सुधी गमनमा निमित्त थई शके नहीं, ये समझ में, जहां तक गमन में होना था वहां तक वो फैलना चाहिए। एक ही परमाणु पूरे लोक में कैसा इतना व्याप्त कैसे होगा, वो तो अपना एक प्रदेश रोकेगा। ख्याल में आई ना बात, ये क्या कहना चाहते हैं? आप कहेंगे काल द्रव्य तो पूरे लोक में है, हाँ पर एक एक करके पूरे में लोक में, एक ही काल द्रव्य पूरे लोक में नहीं है। जीव समुद्र सिवाय ना काले लोक ना असंख्यात्मा भाग माज रहते हुआ थी, क्योंकि हम आपकी जो अवगाहना है, कोई बड़ा है कुछ छोटा है, भले वो महामत्स्य भी क्यों ना हो, वो लोक का असंख्यात्मा भाग उसमें रह रहा है। जीव कितने प्रदेश में फैलता है? असंख्यात प्रदेश। पर वो असंख्यात प्रदेश उसके अपने असंख्यात प्रदेश लोग जितने हैं, परंतु अभी वो तो कैसे होता है, उसका संकोच में रहकर वो अपनी शरीर देह प्रमाण रह रहा है, तो वो लोक का असंख्यातवा भाग में वो अभी रह रहा है, इसलिए अन्य सभी द्रव्यों के लिए वो गमन का हेतुत्व नहीं बन सकता। तेपन लोक सुधी गमन मा निमित्त थई शके नहीं। आकाश गति मा निमित्त हो तो जीव पुद्गलों की गति अलोक मा पन हो, समझ में आई ना बात? अगर उसको मानते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाता? तत्वार सूत्र में आता है ना, जीव वहां तो सिद्ध जीव वहीं पर क्यों रुकता है, बाहर क्यों नहीं जाता, या अन्य जीव भी लोक को छोड़कर बाहर क्यों नहीं गमन करते? धर्म द्रव्य नहीं है ये, निमित्त के द्वारा कथन करने की पद्धति होती है। यहाँ लिखा ना, आकाश अगर गति मा निमित्त हो तो जीव पुद्गलों की गति अलोक मा पण होय, अने तेथी लोक अलोक नी मर्यादा रहे नहीं, परंतु वो तो अचलित मर्यादा है, माटे गति हेतुत्व आकाश नो गुण पण नथी। देखो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करके सुनेंगे ना तो समझेंगे, बहुत कुछ कठिन तो बात है ही नहीं है, क्योंकि छह द्रव्यों के विशेष गुण तो हमको मालूम ही है, यहाँ केवल वही बात लॉजिक से बता रही है, बहुत अच्छा है। अधर्म द्रव्य तो गति थी विरुद्ध कार्य, कौन सी? ये स्थिति, तेमा निमित्त भूत छे, माटे ते पण गति मा निमित्त थई शके नहीं, क्योंकि उसका कार्य स्थिति में निमित्त होना। आ रीते गति हेतुत्व गुण धर्म नामना द्रव्य नु अस्तित्व जणावे छे। देखो कितना व्यवस्थित बराबर अच्छा समझाए। एवी रीते एकज काळे, एकज काळे ने एक ही समय में युगपत स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलों ने, स्थिति रूप परिणमने वाले सभी जीव पुद्गलों को लोक सुधी, ये लोक सुधी शब्द डालना ऊपर भी डाला था, वहां लोक सुधी गमन बताया था, यहाँ लोक सुधी स्थिति नो हेतु पण, यानी लोक में कहीं पर भी जाके वो गमन कर रहा था वो स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना, उसका हेतु क्या है? अधर्म ने जनावे छे, कारण के पहले वही कारण बताएंगे, काल ने पुद्गल अप्रदेशी हुआ थी तेमने ते संभवतु नथी, अभी समझ में ना क्या संभवता नहीं, स्थिति हेतुत्व बना नहीं संभवता। जीव समुद्घात सिवाय अन्यत्र लोकना असंख्यात्मा, आत्मा नहीं है, असंख्यात्मा चाहिए,
मां पर अनुस्वार,
हाँ पर आत्मा हुआ है वो, और असंख्यातात्मा हुआ है, असंख्यात्मा चाहिए, तात्मा लिखा है ना तो त मां और मां के ऊपर बिंदी, तो उसको पढ़ेंगे असंख्यात्मा भाग मात्र हुआ थी, यानी असंख्यातवे भाग प्रमाण होने से तेने ते संभवतु नथी, यानी उसको वो नहीं पाया जाता। लोक ने अलोक नी सीमा अचलित हुआ थी, अगर बाहर गमन करेंगे तो लोक और अलोक की सीमा नहीं रहेगी। आकाश ने ते संभवतु नथी, अने विरुद्ध कार्य नो हेतु हुआ थी धर्म ने ते संभवतु नथी, वो सारे वाक्य वैसे के वैसे लिए यहाँ ऊपर वो ब्रैकेट में समझाने के लिए डाला है, इसलिए वो ऊपर का पैराग्राफ बड़ा था, परंतु यहाँ सेम टू सेम यहाँ पर वो कारण मीमांसा वही बताई यहाँ पर। एवीज रीते काल सिवाय बाकीना समस्त द्रव्यों ने दरेक पर्याय समय वृत्तिनु हेतुपणु काल ने जनावे छे, कारण के तेमने समय विशिष्ट वृत्ति कारणांतर थी सधाती होवाने लीधे, अर्थात तेमने समय थी विशिष्ट एवी परिणति અન્ય કારણથી થતી હોવાને લીધે સ્વતઃ તેમને તે સમય વૃત્તિ હેતુત્વ સંભવતું નથી. યહાં ક્યા કહેના ચાહતે, અન્ય દ્રવ્યો કે લીએ ઇસલિયે લિયા યહાં પર, કે અન્ય દ્રવ્ય સ્વયં એની સમયના સમય પ્રમાણ ઉનકી પરિણતિ રહેતી હૈ. એને સમય કે કાલ કા યુનિટ બતાયા, વો તો અન્ય દ્રવ્ય મેં પરિણમન તો હો રહા હૈ, પણ સમય કી બાત હૈ વો ઉનકે અપને સે વો સમય કી બાત નહીં હો રહી. ફિર સે પઢતે ઇસકો દેખો, ઇસલિયે બાકી કે દ્રવ્ય લિયે બાકીના સમસ્ત દ્રવ્યોને દરેક પર્યાય એની પ્રત્યેક પર્યાયને સમય વૃત્તિનું હેતુપણું કાળને જણાવે છે. સમય વૃત્તિ અને સમય 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 રહેના યહાં પર વૃત્તિ અને સમયરૂપ વહા પાયા જાના સમય વૃત્તિનું હેતુપણું એને એક પર્યાય એક સમય કે લીએ વો સમય સમય વો ચીજ હૈ વો કાલ દ્રવ્ય કો બતા રહી ઇતને. કારણ કે તેમને સમય વિશિષ્ટ વૃત્તિ કારણાંતરથી સદાથી હોવને, એને સમય સમય રહેને વાળી વૃત્તિ અને યહાં યહાં વૃત્તિ અને એવું વર્તન એને એવું તો પરિણમન લેના એને પર્યાય લેના. હા હા, તો સમય વિશિષ્ટ વૃત્તિ કારણાંતરથી એને વહાં કોઈ અન્ય કારણ વહાં હોના ચાહીએ. એક એક સમય જો હૈ વો તો સ્વયં અપને સે તો નહીં ને, અપને તો પર્યાય હૈ, પણ વો સમય વાળી ચીજ કોઈ અન્ય ચીજ વહાં હોની ચાહીએ. તો અર્થાત તેમને સમયથી વિશિષ્ટ એવી પરિણતિ અન્ય કારણથી થતી હોવાને લીધે એને સમય પૂરતી હોતી ને, તો સમય જો હૈ વો અન્ય કોઈ વહાં કારણ ઉસકા હોના ચાહીએ, સમય સમય કો બતાને વાળા. સ્વતઃ તેમને તે સમય વૃત્તિ હેતુત્વ સંભવતું નથી. જૈસે યહાં પર હમને ધર્મ દ્રવ્યો કો છોડકર અન્ય દ્રવ્યો કો ગમન હેતુત્વ સંભવતું નહીં એસા બતાયા હૈ, એસે હી કાલ કો છોડકર અન્ય દ્રવ્યો કે લીએ સમય વૃત્તિપના વો ઉનમે નહીં હોતા. વો સમય વાત વો કાલ કી હૈ, વો સ્વયં અપને કે લીએ નિમિત્ત હોતા હૈ, વો તો સમય પોસિબલ ક્યુંકિ સમય ઉસમે ભી હોતા હૈ, ઇસલિયે વો ઉન્હોને કાલ સિવાય અન્ય દ્રવ્ય લે લીએ.
મુઝે લગતા હૈ,
હાં જરા એક મિનિટ, હાં,
સમય જો હૈ વો દ્રવ્ય કે લીએ હૈ ઓર સમય વૃત્તિ અને દ્રવ્ય કી પર્યાય એસા હૈ.
ના ના ના, વો પર્યાય 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 જો હો રહી હૈ વો એક સમય જીતની હૈ.
ઠીક,
તો યે એક સમય વાલી જો બાત હૈ, યે કાલ કા જો એક સમય મે પલટના જો, યાની કાલ બીતના જિસકો હમ કહેંગે, એક સમય કા કાલ જો બીત રહા હૈ ઉતને કાલ મે ઉસને પરિણતિ કી, તો યે સમય માત્ર કાલ બીતના જો હૈ વો કિસી અન્ય કે કારણ હોના ચાહીએ.
મુજે યે પૂછના હૈ, યહાં સમય કા અર્થ ક્યા લેના હૈ અપને કો?
એક સમય ને સમય,
હા, એક સમય,
એક સમય, સમય વિશિષ્ટ પરિણતિ એને સમય તક રહેને વાલી પર્યાય. इसके बाद कल फिर दोएंगे काल द्रव्य की वहां से ले
गुरुदेव समझाएंगे ना.
हाँ समझाएंगे ना, पर हम ही पढ़ेंगे ना कल, अभी तो समय हो गया अपना. हाँ काल द्रव्य से वहां से ले लेंगे. हाँ शोभा हम अभी बंद करें क्या, आपका प्रश्न है? हाँ कल ले लेंगे फिर दोबारा. हाँ पेज नंबर 90 के लास्ट दो लाइन वहां से लेंगे. चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो. नलिन भाई.